और अनेक लोकोत्तर महापुरुषों का इसी स्थल में बैठकर प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। श्री नारद जी अंगिराजी की कोटि के महापुरुषों का, नारद जी का अंगिराजी का साक्षात्कार किया, अनेक अनेक दिव्य लीलाओं का यहां रहकर दर्शन किया है। श्री सेठ जी के भी बारंबार चरण यहां पड़े, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी यहां आकर विराजे, और पूज्य श्री राधा बाबा ने वृंदावन ब्रज लीला नहीं, गोकुल लीला नहीं, मथुरा और द्वारिका लीला ही नहीं, श्री कृष्ण की लीलाओं में जो अत्यंत अत्यंत गोप्य जो निभृत निकुंज की लीला है उसका रसास्वादन किया है। इसी गीता भक्त श्रीमद रूप गोस्वामी जी का भाव है, श्री कृष्ण के धामों में द्वारिका सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां भगवान ने दीर्घ काल तक अपने ऐश्वर्य में स्थित होकर के लीलाएं की हैं। गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान ने सारी लीलाएं संपन्न की हैं। भगवान चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, बोले इस कारण से दीर्घ काल तक भगवान की लीला का अनुभव प्राप्त हुआ द्वारिका को, इसलिए द्वारिका श्रेष्ठ है। आगे कह रहे हैं जी रूप गोस्वामी जी, कहते द्वारिका में लीलाएं भले ही खूब भई लेकिन द्वारिका को भगवान को प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, यह सौभाग्य मथुरा को प्राप्त हुआ। ध्यान से सुने, यह सौभाग्य मथुरा को प्राप्त हुआ। तो लिए भगवान को जन्म देने के कारण, प्रकट करने के कारण द्वारिका से मथुरा श्रेष्ठ है। बोले मथुरा में केवल जन्म ही हुआ और नंदोत्सव कहां हुआ? श्री गोकुल में। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी है, ये कहां हुआ? गोकुल में हुआ। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मथुरा में केवल जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है, पर जन्मोत्सव की जो झांकी है, दधि कांडो महोत्सव है, वो गोकुल में हुआ, और भगवान की मथुरा की मधुर माखन चोरी आदि मृद भक्षण आदि लीलाएं भी श्री गोकुल में हुई, इसलिए गोकुल मथुरा से भी श्रेष्ठ है। कहते इसके बाद ठाकुर जी वृंदावन आ गए, बोले गोकुल में केवल माखन चोरी मृद भक्षण आदि लीलाएं भई, और वृंदावन में ठाकुर जी ने वत्स चारण किया, फिर गोचारण किया, ग्वाल बाल गोप गोपी सबको सुख दिया। इसलिए अधिक रसमयी लीलाओं का विस्तार वृंदावन में हुआ, इसलिए श्री गोकुल से वृंदावन श्रेष्ठ है। उस वृंदावन में भगवान की ब्रज लीला हुई, वो ब्रज लीला श्रेष्ठ है, जिसमें ब्रह्मा जी के मान का मर्दन भी है, इंद्र के मान का मर्दन भी है, गोवर्धन धारण है, काली नाग का मर्दन है, ये सारी लीलाएं हैं। पर ये जो इसको ब्रज लीला कहते हैं, ये ब्रज लीला क्या है? आप ऐसा समझें कि ब्रजलीला पंचायती जगह है। पंचायती जगह जानते हैं? पंचायती जगह माने जहां किसी एक का आधिपत्य न हो, जहां भिन्न भिन्न भाव वाले, भिन्न भिन्न उपासना वाले एक साथ एक जगह बैठ करके कुछ रसास्वादन कर सकें, उसको पंचायती जगह कहते हैं। उसको पंचायती जगह कहते हैं। तो अब देखो ब्रज लीला में पंचायती है। पंचायती कैसे हैं? बोले वात्सल्य रस के रसिक भक्तों को वात्सल्य रस का अनुभव हो रहा है, सख्य वालों को सख्य का अनुभव हो रहा है उसी लीला में, दास्य वालों को दास्य का अनुभव हो रहा है, शांत रस वाले भी हैं, दुर्वासा आदि ऋषि, शांडिल्य आदि ऋषि पहुंचते हैं, उनको उनके भाव रस के अनुरूप अनुभव हो रहा है, और गोपियों को अपनी उपासना के अनुरूप माधुरी रस का अनुभव हो रहा। तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुरी, इन पांचों रसों के उपासक ब्रज में हैं, और पांचों रसों के उपासक अपनी अपनी भावना उपासना के अनुसार रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसी पंचायती रूप से रसास्वादन का जो स्थल है, वहां जो लीलाएं हो रही हैं, उसको कहेंगे ब्रज लीला। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस ब्रज लीला से भी श्रेष्ठ कोई लीला है? बोले हाँ, इस ब्रज लीला से श्रेष्ठ लीला जहां पंचायती रसास्वादन की बात नहीं है, वहां रसराज जो परम उद्दीप्त रस है, रसराज जो श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है, उस माधुरी रस का रसास्वादन किया जा रहा है विशुद्ध रूप से। आप लोग कहेंगे कि श्रृंगार रस को, माधुरी रस को, कांता भाव को वो रसराज क्यों कहा जाता है? बोले रसराज इसलिए कहा जाता है कि इस रस में सभी रसों का समावेश हो जाता है। जब प्रियतमा को अपने प्रियतम के वियोग में इस दृश्य जगत का कोई भी पदार्थ सुहाता नहीं है, उसकी सबसे अरुचि हो जाती है शरीर संसार भोगों से, और वह परम निर्वेद की अवस्था को प्राप्त करती है नायिका, तो उस काल में वहां शांत रस प्रकट हो जाता है, क्योंकि शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद है। और जब प्रियतम की सन्निधि प्राप्त होती है तो वह अहर्निश वह यही चेष्टा करती रहती है कि मेरे प्यारे कैसे प्रसन्न रहें, इनको सुख कैसे मिले, उनके सुख का निरंतर विचार करती है और उनके सुख संपादन में लगी रहती है। ये दास्य हो गया। गोपियां कहती हैं ते अशुल्क दासी कहा, हम तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। और राधा रानी भी कह रही हैं हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सनिधि। तो आप देखो शांत हो गया, दास्य हो गया, और सख्य, आहा क्या कहना, माधुरी में जैसा सख्य है वैसा कहीं नहीं है, वहां भेद बिल्कुल खत्म, वहां भेद बिल्कुल खत्म। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, वहां तो विचित्र लीला होती है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। क्या अर्थ है इसका? वहां राधा ही कृष्ण हो जाती हैं और कृष्ण ही राधा बन जाते हैं, राधा ही कृष्ण हो जाती है और कृष्ण ही राधा हो जाता है। और विचित्र बात स्वामी जी, श्याम श्याम रचित प्यारी आप ही श्याम भई। जैसे बाबा के प्रीतम काव्य में वो वृषभानु लाडली अपनी भुजा भी देखती तो नीली दिखाई पड़ती है, चरण भी देखती तो नीली दिखाई पड़ती है, और फिर अंत में उनको लगता है कि यहां नील तेज के अतिरिक्त अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। तो श्याम श्याम रटत प्यारी आप ही श्याम भई। अब श्याम हो गई, अब श्याम हो गई तो अब राधा का विरह व्याप्त हो गया। अब तक राधा थी तो श्याम सुंदर का विरह था, अब श्याम हो गई तो राधा का विरह व्याप्त हो गया। तो राधा 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 कहते कहते फिर राधा हो। और हमारे जो ठाकुर जी है ना, हमारे प्राण जीवन धन श्री वृंदावन बिहारी, वे हमारे ठाकुर जी, उनकी भी यही दशा है। वे राधा राधा रटते रटते खुद राधा हो जाते। उनकी जो नील अंग कांति है वो गौर अंग कांति हो जाती है। आप लोग कहेंगे आप अपने मन से कह रहे हैं, नहीं नहीं मन से नहीं, श्री जयदेव महाप्रभु जी गीत गोविंद महाकाव्य में एक जगह कह रहे हैं, विरह पांडु मुरारी मुखाम्बुज द्वितीयम तिरयन्न पिबेदना विधुरतीव तनोति मनोभुवः सुहृदये हृदये मदनव्यताम। इतना तो हम आप सभी जानते हैं, मुरारी मुखाम्बुज पांडु है कि श्याम है, कैसा है कैसा है? ठाकुर जी का मुख पीला है कि नीला, चांद्र नील, कैसा है? अरे सभी लोग कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम शांताकारम भुजगशयनम मेघवर्णम शुभांगम, ये तो इनका रजिस्टर्ड रंग है, पक्का रंग है, स्थाई रंग है भगवान का, पर वो कलर बदल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, रंग बदल गया। जयदेव महाप्रभु के विरह पांडु मुरारी मुकाम श्री जी के विरह में, आहा ठाकुर जी का श्याम मुख गौर हो। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत दसम स्कंध युगल गीत में कह रहे हैं, बदर पांडु बदनो मृदुगंडा। उपमा दे बदर पांडु बदना, बदर जानते ना, बेर, बेर ही कहते ना यहां भी, बेर कहीं कहीं बोर भी कहते हैं, बैर भी कहते हैं, यहां बैर कहते हैं। तो बेर होता है वो जब पूरी तरह पक जाता है तो कैसा होता है, पीला होता है, पक कर एकदम पीला हो जाता है, केसरिया हो जाता है। तो कहते बदर पांडु बदना, ये श्याम सुंदर बदर पांडु बदन हो गए हैं। बोले बदर पांडु बदन कैसे हो गए, ये रंग कैसे बदल गया इनका? तो एक भाव तो ये है कि वे गोचारण करके लौटे हैं तो अति सुकोमल हैं, श्रम हो गया है, उसे श्वेद कण श्रम जल श्वेद कण मुखारविंद पर झलक आए हैं, पसीने की बूंदें आ गई हैं। अब गो माताएं लक्षों लक्षाधिक गो माताएं असंख्य गोवंश आगे चल रहा है और गो माताओं की चरणों से रज उड़ रही है, तो वो पसीनों की बूंदों पर चिपक करके वो जो असली रंग है वो तो तुरहित हो गया। गोरजमय मुखमंडित, गोरज मुखमंडित होने से वो वृंदावन की रज पीली पीली है, गोरज पीली पीली है, और वो गायों के खुरों से उड़ करके मुख पर आ गई है, कपोलों पर छा गई है, इसलिए बदर पांडु बदना ऐसा कहा। एक भाव ये और एक भाव ये है, अरी सखी इन हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर को जो को जो मुखारविंद पीरो है रहो है, हमें तो ऐसे ही लगे कि जब ये गैया चराएवे को नंद महल सो निकसे होंगे तो बरसाने है के निकरे होंगे जरूर, और वहां लाडली जी के मुखारविंद को इनको दर्शन भयो होएगो, और जैसे ही इनको दर्शन भयो होएगो इनने स्वामिनी जी को स्वरूप अपने चित्त में बसाए लियो होएगो, और वाको चिंतन करते 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 उनकी अंग कांति मुखारविंद पे प्रकट हो रही है। मद विघूर्णित नेत्र हैं, कोई मद पैदा करने वाली मादक वस्तु का सेवन तो श्री कृष्ण करते नहीं है, पर मद विघूर्णित लोचन ईसन इनके नेत्र मतवाले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बोले श्री जी की रूप सुधा का रसास्वादन करके मतवाले, तो अब देखो सख्य भी आ गया।
भज सखे बाबा किं करी मनो जल रुहा ननम चारु दर्शय।
भज सखे के सखे
सख उदेवा सात्वतांकुले
एक जगह अनेकों जगह सखे। इसलिए माधुर्य में जैसा सख्य है वैसा सख्य अन्यत्र नहीं। क्यों स्वामी जी? वे केवल सख्य के भाव का रसास्वादन करने वाले वाही लीला में तो सख्य का अनुभव करेंगे, पर जहां ठाकुर जी महल बिहारी होकर विराजमान हैं वहां तो श्री दामा आदि सखा भी बाहरी विराज जाते हैं, उनको भीतर प्रविष्टि नहीं। तो अत्यंत अंतरंग और अत्यंत एकांत में जहां सख्य का आस्वादन किया जा सकता हो ऐसा केवल माधुरी है एकांगी रूप से। और वात्सल्य नायिका में माधुरी रस में वात्सल्य रस भी है। आप लोग कहेंगे वात्सल्य रस कहां से आ गया, ये तो विरोधी रस है। अरे भैया विरोधी रस नहीं, आप लोग भगवान की इच्छा से सदगृहस्थ हैं। यदि आपकी धर्म पत्नी आपके सर्वथा अनुकूल हैं, पतिव्रता हैं, तो आपको भी इस बात का अनुभव होता होगा कि जब वे सती सौभाग्यवती माताएं अपने पति को भोजन कराने बैठती हैं उसमें उनमें वात्सल्य भाव आ जाता है, जैसे कोई माँ लाड़ प्यार से परोस के जिमावे, इस तरह से जिमाती है माताएं। तो भोजन आदि कराते समय वे नायिका होकर के भी वे मातृभाव से युक्त हो जाती हैं, उनमें वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है, इसलिए वो वात्सल्य है और श्रृंगार तो है ही है। तो सभी रसों का कहां तक रौद्र वीर भयानक आदि रस जो हैं, इन रसों का भी रस करुण रस, इनको मिलाकर नौ रस हो गए, इन रसों का रसास्वादन भी श्रृंगार रस में हो जाता है। तो श्रृंगार रस में सभी रसों का रसास्वादन एक साथ हो जाता है, इसलिए इस रस को रसराज कहा गया। पर यह बात सुनकर कोई अपने मन में ऐसा नहीं समझ लेना कि जो कि माधुरी रस के उपासक नहीं है, शांत रसिया, दास रसिया, सख्य रसिया, वात्सल्य रस, इनमें से किसी एक रस में जिनकी स्थिति है वे हीन हैं, ऐसा नहीं समझना। बिल्कुल ये समझने से अपराध हो जाएगा, क्योंकि भगवान स्वभाव से परिपूर्ण हैं, इसलिए उनका अनुभव करने वाला कोई भी भक्त अपूर्ण नहीं रह सकता। परिपूर्ण का उपासक अधूरा रह जाए ये कैसे संभव है? वे सभी रस सभी भाव अपने आप में परिपूर्ण है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि श्री ठाकुर जी अपने प्रेमी आश्रित प्रपन्न शरणागत भक्त को किसी भाव से किसी रस से वंचित नहीं रखते, उसको सब रसास्वादन करा देते। सभी भाव का सभी रसों का आस्वादन आस्वादन करा देते। स्वामी जी को पता है, श्री नारायण भैया जी को भी पता होगा, गिरिराज जी में लुकलुक दाऊ जी है, आने और के पास लुकलुक दाऊ जी, तो कहते ठाकुर जी को चंद्र सरोवर पर रास भयो, तो दाऊ दादा ने इच्छा करी कि हमको रास को दर्शन हो। अब दाऊ दादा को रास का दर्शन कैसे हो? तब दाऊ जी वहां बैठ गए गिरिराज जी के शिखर पर, और लुक लुक वहां से लुक छिप करके दाऊ जी ने रास का दर्शन किया, दाऊ जी का नाम हो गया लुक लुक दाऊ। अब दाऊ जी अपने रूप में रास का दर्शन करें तो वहां भी कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, कोई ना कोई पूछने आ जाएगा, आप इस रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हैं। दाऊ जी ने कही ये बड़ी आफत है, को सखा को ग्वारिया आए गए हो कि दादा तू यहाँ कैसे आयो, तू सांची सांची बता, मैं कहा कहूंगा रस भंग हो रह जाएगा। तो वहां दाऊ जी ने सिंह का रूप धारण करके रास का दर्शन किया, और आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो गिरिराज जी की शिला में बिल्कुल सिंह की आकृति है। कहते ये दाऊ जी सिंह की आकृति। हम निवेदन ये कर रहे हैं कि जब अपने बड़े भैया को माधुर्य रस का अनुभव करा सकते हैं, दाऊ दादा को बड़े से तो मर्यादा रखनी चाहिए, जब उनको अनुभव करा सकते हैं तो कौन ऐसा उपासक भक्त है वे जिसके ऊपर कृपा करें और अपनी मधुर लीला का अनुभव न करें। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, बस इनके हो जाओ, संत कृपा करके सद्गुरु कृपा करके जिस भाव में प्रतिष्ठित कर दें वहां पहुंच जाओ, फिर तो आगे बढ़ना तो है ही। आगे बढ़ना, हम क्या निवेदन कर रहे थे भूल गए, कहा क्या कर रहे थे। हाँ, हम ये निवेदन कर रहे थे कि यहां उस दिव्य परम दिव्य माधुर्य का अनुभव इस भूमि में किया गया है, तो जहां केवल विशुद्ध माधुर्य का अनुभव होता है उसे कुंज का रस कहते हैं, वहां सहचरी हैं और सहचरियों के मध्य उनके प्राण युगल है। जहां युगल सरकार का सहचरी गण रसास्वादन करें उस स्थल का नाम है कुंज, वहां सभी सखियों का प्रवेश है। और स्वामी जी एक ऐसी भी जगह है जहां सब सखियों का भी प्रवेश नहीं है, केवल प्रधान अष्ट सहचरी गण श्री ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी चित्रा आदि इनका ही प्रवेश यहां है। वे अष्ट सखियां ही प्रधान रूप से रसास्वादन कर रही हैं, वो है निकुंज लीला। तो रूप गोस्वामी जी कहते व्रज लीला से कुंज लीला श्रेष्ठ है, और कुंज की लीला से निकुंज की लीला श्रेष्ठ है, कुंज की लीला से निकुंज। जहां तब आप लोग कहेंगे अन्य सखियां क्या, वो अन्य सखियां प्रधान अपनी यूथेश्वरी ललिता विशाखा आदि जो यूथेश्वरियां हैं वे जिस भाव से उस युगल रस का अनुभव कर रही हैं उसका दर्शन करती हैं वे सखियां बाहर से कुंज के बाहर से, और दर्शन करके उसका आस्वादन करती हैं। पर वे प्रधान यूथेश्वरी अष्ट सखियां वहां उपस्थित होकर उसका अनुभव करती हैं, वो क्या है निकुंज की लीला निकुंज का रस। और एक ऐसा है स्थल जहां अष्ट सखियां भी बाहरी विराजमान रहती हैं, केवल युगल ही वहां विराजमान रहते हैं, वहां दिव्य ऋतु के अनुसार सेज का निर्माण होता है। जैसे इस समय शीत ऋतु है तो उसके अनुकूल कुंज का निर्माण होता है, और उसमें उसके अनुकूल ऋतु के अनुकूल सैया का सैया को सुसज्जित किया जाता है, सेज धराई जाती है और उस पर युगल पौड़ते और सखियां पाद संवाहन करके ललिता विशाखा रंगदेवी आदि चरण दबा करके धीरे से बाहर आ जाता है। महल में शोर करो जिन को महल में शोर करो जिन को नूपुर दावी चलो मोरी सजनी
रुनक झुनक नहीं हो, महल में शोर करो जिनको।
क्यों? युगल रसिक रहे सोए, इसलिए महल में शोर करो जनी। वे जब युगल पौड़ जाते हैं, सो जाते हैं, तो वे सहचरियां भी बाहर आ जाती हैं, और फिर बाहर आकर क्या करती हैं? बाहर आकर कोई काम तो होगा। युगल को बिलसाने के अतिरिक्त इन पे कोई धंधा ही नहीं, कोई काम ही नहीं, एक ही काम, निरंतर अष्टयाम की सौंझ सजाना संभारना, यही इनका काम है, दूसरा कोई काम नहीं। पर वहां बैठ करके वे लता रंध्र से युगल के शयन की झांकी का दर्शन करती हैं, और इनमें जो रस वार्तालाप होता है, इस रस वार्तालाप का भी श्रवण करती हैं। एक बातचीत ऐसी भी तो होती जो बिल्कुल दो से तीसरा नहीं, एक ऐसी भी बातचीत होती। क्यों? बोले षटकर्णो विद्यते मंत्रा, दो और दो चार कान हो गए, और छठे श्रवण यह परत कहानी। इसलिए एकांत श्री लाल जी अपने हृदय की बात प्रिया जी से, और प्रिया जी अपने हृदय की बात लाल जी से कहती है। उस बातचीत का श्रवण करती हैं सहचरी। श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ के प्रणेता लीला शुक श्री विल्व मंगल जी महाराज ने इस रस का भी एक भाव कृष्ण करणामृत में दिया। जहां युगल पौढ़े हैं निवृत्त निकुंज में दिव्य सेज पर, और सहचरी उनकी वार्तालाप का श्रवण कर रही है, तो क्या लीला हो रही है? उस निवृत्त निकुंज की लीला का भी एक छंद में श्री विल्व मंगल महाप्रभु ने वर्णन किया है।
ओष्ठम मुंच हरे विभेमि भवता पानैर्हता पूतना कंठाश्लेष महुम ममुम जहीहि दलिता वालिंगनेनार्जुनो मा देहि चुरितम् हिरण्यकशिपुर्नीतो नखैः पञ्चताम् इत्थम् बारित रात्रिकेलि रवताल् लक्ष्म्यापहासाद्धरिः इत्थम् वारित रात्रिकेलि रवताल् लक्ष्म्यापहासाद्धरिः।
अब देखो केवल युगल ही हैं, पर आसक्त शिरोमणि रसिक शेखर श्याम सुंदर वे अभी भी अधर पान से विरत नहीं होना चाहते, तो श्री जी कह रही हैं ओष्ठम मुंच। क्यों? बोले मुझे बड़ा डर लगता है, तुम्हारा पान बड़ा खतरनाक है। क्यों? बोले तुमने ऐसा दूध पिया पूतना का कि उसके प्राण ही पी लिए। प्यारे हमारे प्राणन ने मत पियो। बोलो वृंदावन बिहारी कंठाश्लेष मम जही गलबहियां भी मत दियो। क्यों? बोले तुम्हारा आलिंगन भी बड़ा खतरनाक है, ऐसा आलिंगन किया यमलार्जुन का धड़ाम से पटक दिया उनको, हमको सेज से नीचे गिराओगे। तब अपने अति सुकोमल कर कमल से उंगलियों से श्री जी के चरण तल का स्पर्श करते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये स्पर्श भी मत करो। क्यों? बोले ये बड़े खतरनाक हैं, हिरण्य कशिपुर नीतो नखई ही पंचता, उसकी चीर फाड़ कर दी हिरण्य कशिपुर की। तब ठाकुर जी ने कहा अच्छो प्यारी जी ये बताओ अब कहा करूं। बोले प्यारे अति काल है गयो है सो सोए जाओ सहन करो हैं। इत्थम बारित रात्रि केली रवतात लक्ष्म्या पहासात धरी। ये लक्ष्मी निवृत्त निकुंज की लक्ष्मी जो वृषभानु लाडली श्री राधा हैं उनकी यह रस भरी बातचीत रसिकों की रक्षा कर। यद्यपि ये भाव श्री वृंदावन की एकांतिक गोष्ठी के अतिरिक्त अन्यत्र कहे जाने योग्य भी नहीं है और हम कहते भी नहीं है, लेकिन वाटिका ऐसा स्थल है, यहां पूज्य भाई जी विराजमान हैं, यहां पूज्य बाबा विराजमान हैं, यहां अनेक गुप्त प्रकट सिद्ध महापुरुष और सिद्ध जन यहां विराजमान हैं। तो निवृत्त निकुंज की लीला श्रेष्ठ है, उसको सर्वोपरि कहा। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं कि ये सर्वोपरि लीला ब्रजलीला कुंज लीला और निकुंज लीला और निवृत्त निकुंज तक की लीला का रसास्वादन इस स्थल में किया गया है। तो भले ही यह चार धामों में न आता हो, सप्तपुरी में न आता हो, पर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी स्वान्तस्थे नगदाव्रता, इन प्रेमी अनुरागी सिद्ध महापुरुषों ने यहां रसास्वादन करके यहां भजन करके इस भूमि में श्री नित्य वृंदावन को प्रकट कर दिया है। श्री गोरेलाल जी वाले महाराज जी यहां आए तो उन्होंने कहा कि कई बार बाहर जाने पर वृंदावन का बहुत वियोग व्याप्त हो जाता है, पर पता नहीं कैसा स्थल है, यहां आने के बाद यह लग ही नहीं रहा कि हम वृंदावन से बाहर गए, हमको तो लग रहा कि हम वृंदावन में हैं, निधिवन राज और सेवा कुंज में बैठकर जैसी अनुभूति हो वैसी अनुभूति यहां हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे परम पवित्र गीता वाटिका परिसर में हम लोग श्री राधा बाबा के जन्मोत्सव में गोस्वामी जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। तो हम स्मरण कर रहे थे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उनको लोग पहचान न सके और जिस परिवार में उनका पोषण हुआ वो परिवार भी भगवत धाम प्रयाण कर गया, चुनिया भी भगवत धाम चली गई और अब उनकी वह दशा प्रारंभ हुई। देखो हीरा मूल्यवान कब बनता है, खान से निकलते ही मूल्यवान नहीं होता है, खान से निकलकर फिर उसको तराशा जाता है, फिर उसको आहरण लोहे की आहरण होती है और ऊपर से घन पटका जाता है, घन पटकते 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 जो छिटक छिटक कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है उसको उत्तम कोटि का हीरा नहीं माना जाता है। जो अंत में एक ऐसा टुकड़ा बचता है जिस पर सैकड़ों घन पड़ जाए वो टूटे फूटे नहीं उसको कहते पक्का हीरा, और जितने घनों की चोट पड़ती है वो हीरा उतना चमकदार हो जाता है। बस यही समझ लो ठाकुर जी जिस हीरे को ज्यादा चमकाना चाहते हैं उस पर खूब चोट पड़वाते हैं। खान से निकले हीरे तो ये सब संत है ही हैं, पर जिसकी चमक ज्यादा श्री राधा बाबा जैसा हीरा जब प्रकट करना चाहते हैं तो फिर पक्का हीरा बनाने के लिए भले ही क्रांति के माध्यम से ही सही खूब चोट पड़वाते हैं और ऐसा चमकदार हीरा प्रकट करते हैं है? इसलिए यही है गोस्वामी जी की बाल्य दशा, इस दुर्दशा ने ही उनको चमकदार बना दिया।
घन अहरन कसी हीरा निवटे कीमत लक्ष हजारा, घन अहरन कसी हीरा निवटे ऐसे जांचत दुष्ट संत को,
ऐसे जांचत दुष्ट संत को,
करण जगत उजियारा,
करण जगत उजियारा,
साधो निंदक मित्र हमारा,
साधो निंदक मित्र हमारा।
इसलिए निंदा करने वाले, तिरस्कार करने वाले, उपेक्षा करने वाले, वे साधक के परम हितैषी हैं। महाराज जी, कवियों ने तो यहां तक वर्णन किया है कि लगता है आज इस बालक की दीन दशा को देखकर दया भी निर्दय हो गई। ऐसी दशा देखकर दया को तो दया आनी चाहिए थी, पर लगता है दया भी आज निर्दयता बन गई। गोस्वामी जी उस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, उस रस का आस्वादन किया है गोस्वामी जी ने। और उस रस का आस्वादन करने पर तो अपने जीवन की सारी पीड़ाओं का विस्मरण हो जाना चाहिए था, लेकिन महदाश्चर्य महदाश्चर्य, गोस्वामी जी को वह पीड़ा कितनी भयंकर होगी। उस अद्भुत युगल प्रेम रस का आस्वादन करने के बाद भी उन्हें अपनी बाल्यकाल की पीड़ा भूली नहीं, इसलिए उनके काव्यों में यत्र तत्र उनके बाल्यकाल की पीड़ा मुखरित हो उठी। श्री गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं, मातु पिता जग जाई तजो, अर्थ आप लोग सुन करके विचार करें, व्याख्या नहीं करेंगे नहीं तो बहुत विलंब हो जाएगा। मातु पिता जग जाई तजो, विधि हो न लिखी कछु भाल भलाई, विधि हो न लिखी कछु भाल भला, नीच निरादर भाजन कादर, कुकुर टूकन लागि ललाई। स्वपच भी हमारा आदर नहीं करता था, वो भी हमारा तिरस्कार करता था। एक एक टुकड़े के लिए मैं तरस गया। एक दिन वे थे तुलसीदास के, अब श्री राम नाम का प्रभाव तो देख लो।
राम सुभाय सुन्यो तुलसी, प्रभु सो कहो बारक पेट खलाई, स्वारथ की स्वारथ को परमारथ को, रघुनाथ सोसाए, स्वारथ को परमारथ को, रघुनाथ सोसाइब खोरी न लाई।
नीच प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम समझान सुखारथ। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस कवितावली के छंद में कि हमने तो पेट भरने के लिए राम जी का आश्रय लिया था, लेकिन देखो तो सही, लोक और परलोक दोनों सुधार दिए, परमार्थ और स्वार्थ दोनों सिद्ध हो गए। धन्य है ऐसा शील सिंधु रघुनाथ जी के अतिरिक्त और कौन होगा।
जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दी।
कैसे दर्द भरे शब्द हैं, बारे ते ललात बिललात द्वार दीन दीन,
बारे ते ललात बिललात द्वार दीन दीन, जानत हो चार फल चार ही चनक को।
कई कई दिन व्यतीत हो जाते अन्न का कण नहीं मिलता और कोई चार चने हमारे हथेली पर रख देता तो मुझे लगता धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा।
तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, सुनत सिहात सोच विधिहु गणक को।
अब यह तुलसीदास समर्थ रघुनाथ जी का सेवक हो गया तो अब हमारे सौभाग्य को लिखने में ब्रह्मा जी सरस्वती जी भी अब समर्थ नहीं है। ये किसकी महिमा है, ये तुलसीदास की महिमा है। अरे बोले नहीं भैया, हमारी जैसी दुर्दशा को प्राप्त जीव भी उनका केवल दो अक्षरों से भला हो गया। वाह वाह, इसलिए भैया परमार्थ सिद्ध करना हो तो राम राम करो और स्वार्थ सिद्ध करना हो तो राम राम करो। राम नाम नाम गोस्वामी जी कह रहे हैं,
नाम राम रावरो सयानो कियो बावरो, जो करत गिरते गरु तृणते तनक को।
हे रघुनाथ, आपका नाम कितना दिव्य है, जो तिनके से भी अधिक छोटा था आज उसको सुमेरु के समान वजनदार बना दिया। और राम जी, सुमेरु कोई मिट्टी पत्थर का पर्वत नहीं है, काय का पर्वत है, स्वर्णमय। बोले कहां तो तिनके के जैसा अस्तित्व ही नहीं था तुलसीदास का, राम नाम ने स्वर्ण पर्वत सुमेरु के समान। सुमेरु उस पर्वत का नाम है, ध्यान दें, सुमेरु उस पर्वत का नाम है जिसकी सूर्य चंद्र दोनों परिक्रमा करते हैं। भाव क्या है, बोले आज ऐसे ऐसे अमलात्मा विमलात्मा ऋषि भी तुलसीदास का दर्शन करना चाहते हैं। ये है श्री राम नाम का महात्मा।
जाति के सुजाति के कुजाति के पटाग बस, खाए टूक सबके विदित बात दुनी को।